নামিতম নামিতম প্রথম বিভাগ আর ইসমে কাল আমলোকে প্রসঙ্গ মে আয়া কি নবদ্বীপ ধাম আশ্রয় স্বরূপে ভক্তি দেবী স্বয়ং নবদা ভক্তি পীঠ স্থান অর্থাৎ যা পর আশ্রয় সে ধীরে ধীরে করকে হৃদয় মে ভক্তি দেবী আবির্ভূত হে প্রকাশিত হে কলিযুগ মে আর কই ধাম নেই হ্যাঁ কই আর আশ্রয় নেই হ্যাঁ যা পর শরণাগত হোনে সে ভক্তি দেবী কী কৃপা মিলে ऐसा कोई जगह नहीं है। कैसे प्रमाण दिया कि जय नवद्वीप नव प्रदीप स्वभाव पाषंड गदेक सिंह सिद्धन शरीर धारी कृपा मुदीर्ज तम प्रपद्य कृपा मुदीर्ज भगवान मुरारी ऐसा भी कई बताया ऐसे भी कई बताया बताते हैं नवद्वीप नव प्रदीप है अर्थात हृदय के कोने कोने में शिखा को प्रज्वलित करके आलोक प्रदान करके जीव को शुद्ध सरल मार्ग प्रदर्शन करके उनको नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करके भगवान के चरणारों में समर्पित करने सेवावृत्ति दान करके। अब यहाँ पर सबसे पहले आत्मनिवेदन क्षेत्र जो मायापुर है, जीव सबसे पहले आत्मनिवेदन नहीं कर सकते, वो आत्मा को जानते ही नहीं या शरीर को जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, जो कुछ है उनके निकट उसमें इतना मस्त है चिंता करने के समय नहीं। वहां पर बताया सबसे पहले जो स्वनाथ का भक्ति, और भक्ति की बात तो सुने हैं किंतु आश्रय तो मिला नहीं किसी को। श्रवण करना चाहिए, कहां जाकर के किसे श्रवण करें, परीक्षित महाराज अपेक्षा है, अपेक्षा कर रहे हैं गंगा किनारे, मैं क्या करूं। भगवान से प्रार्थना की, सब ऋषि महर्षि से प्रार्थना की, किंतु ऋषि महर्षि ने विभिन्न प्रकार उपदेश दिया किंतु नहीं कुछ शांति मिली। जब किसकी कृपा, सुखदेव गोस्वामी आए भगवत कृपा से, जब उनसे श्रवण किया तब उनको सब कुछ मिला। तो ऐसे ही बिना आश्रय के जहां तहां, बिना संबंध के, बिना श्रद्धा के श्रवण करने से वो फलीभूत नहीं हुआ। सभी लोगों की श्रद्धा सुखदेव गोस्वामी में संपूर्ण रूप से नहीं था, अपने अंदर अभिमान था, मैं बहुत समझता हूँ और मैं जानने वाला हूँ और ये छोटा सा बालक है अभी कुछ भी नहीं जानता है। भले ही ये जो भागवत पुराण बता रहे हैं नई कोई चीज है, उत्कंठा से भी कुछ सुनने को आए, क्योंकि भागवत पुराण तब तक जब अपने प्रकाशित और प्रचारित नहीं हुआ था, वैष्णव जी केवल अनुभव किए और वैष्णव जी चाहते थे मैं प्रकाश करूं किंतु प्रकाश नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या है, पहले उन्होंने अपने चार शिष्यों के द्वारा समस्त चार वेदों को और पुराणों को, उपपुराण और समस्त उपनिषद सब प्रचार कर चुके थे। वो चिंता कर रहे थे, चिंतान्वित थे, ये तो जगत में प्रचारित हो चुका है धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें, अब पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है इसको मैं कैसे प्रचार करूं और वर्णन करूं। किंतु सुखदेव गोस्वामी जब किया कर प्रचार प्रथम भागवत का अधिवेशन करने लगे, उस समय सभी लोगों की श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए बतलाया श्रवण करने के पहले यदि कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कथा हृदय में जाकर के प्रवेश नहीं करेगा। सद्य रिद्ध वरुद्ध ते पृथ्वी सुसुसु तत्कना, सद्य सद्य तत्कना हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएंगे और बन जाएंगे, निकलेंगे नहीं। कब, कृति ही सुकृति पन्न जीव, यदि सुकृति है तो श्रद्धा होगा। इससे भगवत कथा में जबकि सुतो गोस्वामी स्वर्णुकादि ऋषियों को सुना रहे हैं तब सबसे पहले बताया मैं बालक हूं, कुछ जानता नहीं हूं, किंतु मैं छोटा सा था, सुखदेव गोस्वामी जो मेरे गुरुपाद पद्म उनके नजदीक में मैंने बैठा था, वो कृपा पूर्वक मेरे लिए ही समस्त कथा का कीर्तन किया और मैं समस्त श्रवण किया, मैं हृदय में धारण किया, इसलिए ये जो कथा वाचक मेरा गुरुपाद पद्म है वो कैसे हैं, बाल ब्रह्मचारी वो समस्त रसज्ञ, ब्रह्मज्ञ नहीं कहा, क्यों व्यासदेव जी ने निर्देशन दी कैसे सुखदेव निगमो कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत रसमालयम। सुखद गोस्वामी के मुख से जो निकला है रसमालयम रस स्वरूप है। अब सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी की समस्त गुण हमारे सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की और स्तुतियां की। जब की जागर के सोनू का दृष्टियों की थोड़ा श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसके बाद आत्मतत्व ज्ञान की बात बतलाया। जीव आत्मा क्या है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है और हजार हजार वर्ष भगवत तत्व का अनुभव करने के बाद श्रवण करने के बाद जो त्रिनाथ विश्वनीत नहीं हुए उनके चित्त वृत्ति यदि निर्मल नहीं हुआ और यदि सदा भगवत उन्मुखी नहीं हुए चित्त में यदि और किसी चीज का स्थान आ गया तो वो व्यक्ति कभी भगवत सान्निध्य में गए नहीं श्रवण किया नहीं और उनको अधिकार नहीं मिला है। अभी भगवत कथा कानों के द्वारा पान करते 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 उनका तृप्ति बढ़ जाती तृप्ति होती नहीं और पिपासा बढ़ जाता है उत्कंठा बढ़ जाता है निर्मल चित्त हो जाता है। भगवान के सान्निध्य प्राप्त करने के लिए दिन रात उनको उत्कंठा और उन्होंने विनय करके प्रार्थना युक्त हो जाते हैं कि कैसे पाऊंगा क्या करूं कहां जाऊं। इस प्रकार से प्रथम अवस्था में उनकी उत्कंठा बढ़ाया। द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी ने सोनू का दृष्टि को केवल यही बातें सुनाया गुरु की महिमा और आत्मतत्व ज्ञान और किस प्रकार से भगवान के प्रति और भगवत भक्ति के प्रति और हमारा उत्कंठा बढ़े और गुरु के प्रति श्रद्धा हो। धीरे धीरे करके सुत गोस्वामी को अब तुम नहीं कह करके आप कहने लग गए। इसके बाद में जातिगत जो विचार था वर्णगत विचार और उनका बहुत दिन के साधना की जो अभिमान सब टूटा और फिर बोले भगवान कृपा करके आपको भेजा है हम लोगों के लिए नहीं तो हम लोग कभी इसके अनुभव नहीं कर पाते थे। फिर श्रद्धा होकर के अवनत होकर के प्रश्न पूछने लगे। उस जिज्ञासा के बाद में सुत गोस्वामी उत्तर देने लगे। बोले मैं उत्तर नहीं देता निवी नवजगंद संवाद को लाए एक एक करके उत्तर देने लग गए। ऐसे बता रहे हैं वो युग में उनके अंदर सामर्थ्य थी उन्होंने सब जीवों को सुनकारी ऋषि महर्षियों के लिए प्रचार प्रसार किया और उनके चित्त को बदल दिया और तब भागवत जाकर के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए फिर नहीं निकले और धीरे 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 प्रभु मित्र पद कार्य करने लगे। किंतु कलयुग में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन और मिलने पर भी श्रद्धा नहीं और विशेष करके बात एक आ जाता है कि जीवों के अंदर में इतना धैर्य नहीं तो क्या करें। तो बतलाया ये जो शरण देने वाले श्रवणैक्य स्वरूप धाम कौन धाम है नवद्वीप में कौन सा श्रवणैक्य धाम कौन सा जी कुलदीप श्रवणैक्य नहीं श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पादसेवनम अर्चनम बंधनम दायित्व सुखात्म निवेदनम आत्मनिवेदन मायापुर है। इसके बाद में गोद्रुम द्वीप को बताया श्रवणैक्य भक्ति ठाकुर जाकर के पहले वहां बैठे क्यों जब तक उस धाम में गोद्रुम में नहीं जाते कोई मधुरमदीप गोद्रुमदीप है ये सब बतलाया श्रवण और कीर्तन। तो जब तक ये श्रवण आज के धाम की आश्रय नहीं लेंगे तब तक हृदय में वृद्धि नहीं आएगी और वो साधु मिलेंगे नहीं सब साधु। इसलिए धाम के निकट क्या बोलते हैं आत्मनिवेद न तुम्हारा धाम है शरणागत तुम्हारा धाम है हो ही ना शरणागत भूल तो गया सब खा गया अर्थात गोपतम ठाकुर जी ने बतलाया वहाँ जब तक धाम के प्रति शरणागत नहीं होते हैं धाम कौन है बलदेव प्रभु धाम कौन है नित्यानंद प्रभु। धाम हृदय में आविर्भूत नहीं हुए हमारे हृदय के सत्ता को नहीं बनाया बीज के रूप में क्षुद्र रूप में वो बीज पुरुषपाद द्वंद से मिला है। अब क्या करना है श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन तभी मूल लता बाड़ी जाए गौरव वृंदावन श्रवण और कीर्तन करना पड़े। श्रवण कहाँ करे किस बात करे जहां तक श्रवण करने तो होगा नहीं खारा पानी डेन का पानी और नर्दमा का या क्या केमिकल का पानी वो भी पानी है वो डालने से पेड़ पौधा होगा जल जाएगा। इसलिए छोटा पौधा अधिक पानी से भी खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ लोग अनधिकार चर्चा करने जाते हैं कर करके जा करके खुद भी डूबते हैं, दूसरे को डुबाते हैं, बर्बाद कर देते हैं सब। इसलिए स्वर्णक धाम पहले आत्मनिवेदन करो अर्थात शरणागत हो, होने की जरूरत नहीं। उस धाम में जाकर के कोई यदि एक रात्रि बात करे, उनकी महिमा को श्रवण करे, हृदय में एक बार भी उत्कंठा हुई धाम दर्शन करने की या श्रवण करने की, स्पर्श करने की, तो बताया भक्तिम ठाकुर या और आचार्य लोगों ने हमारे गोष्ठ दरवाजा जगन्नाथ दरवाजा सब ऊपर से नीचे तक जितने हमारे आचार्य लोग हृदय में श्रवण करने की व्यक्ति शुद्ध श्रवण करने की शक्ति आएगी और श्रवण करने की विपक्षा जगेगा, इच्छा जागृत होगा। सुखदेव परिचित महाराज बहुत दिन थे किंतु कभी उनके तो श्रवण करने की इच्छा नहीं हुई, सब छोड़ करके आने की वृत्ति नहीं जागृत हुआ, मरते मरते राजप्रसाद में आए क्यों, तो बतलाया केवल एक काम हो गया था वहां क्या, ऋषि कुमार ने अभिशाप तो दे दी और जो ऋषि थे उनके पिता उनके वन मंदिर मंदिर में बहुत उत्कंठा हुआ, हाय तुमने अभिशाप दे दी ब्रह्मवाद को, अब इनका कल्याण कैसे हो, भगवान के चरण प्रार्थना की, प्रभु बालक ने तो कुछ कह दिया ब्रह्मवाद को चलेगा तो है नहीं, किंतु इनका अंतिम कल्याण होना चाहिए। साधन लीला में ऐसे दिखाते हैं, आज यदि नित्य पार्षद माने तो कोई साधन की बात ही नहीं आता है। तो यहाँ पर भक्तिम ठाकुर जी ने दिखाया सब कुछ छोड़कर भक्तिम ठाकुर धाम में आए, बताया हुआ यानी कि बोले तुम्हारा धाम है शरणागत क्या, उसके बाद में और है बहुत सुंदर कीर्तन है, भक्तिम ठाकुर वहां बैठ करके श्रवण कीर्तन स्मरण करने लगे और एक एक धाम की एक एक दीप की भक्ति के सब व्याख्या करने लगे, कीर्तन करने लगे और नवदीप धाम परिक्रमा शुरू कर दी। इसलिए बतलाया कि चैतन्य चंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले धाम के चरणों में आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे आश्रय ग्रहण किया धाम के चरणों में ऐसे श्रवण करने की वृत्ति आएगी और श्रवण करने की वृत्ति आने से क्या होगा, ठीक उपयुक्त साधु के संग होगा और श्रवण करेंगे और श्रवण करने से आत्मबल मिलेगा, आत्मबल मिलते 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 फिर कीर्तन करने की शक्ति आएगी, जैसे कीर्तन करने की शक्ति आई तो समझना चाहिए बच्चे अभी मुंह से जवान निकल रहा है, अर्थात अभी छह महीना एक शब्द लेते थे चलने लगे थोड़ा ताकत है, सुनकर समझता है किंतु बोल नहीं सकता, कुछ दिनों के बाद पहचानने लगे और वो बोलने लगे, अर्थात कीर्तन कीर्तन अच्छा भक्ति और कीर्तन करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य आने लगा, अब समझने से भगवत शक्ति हृदय में आकर ये कार्य कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो कीर्तन किया और कीर्तन के साथ साथ में स्मरण होने लग जाता है, तब धीरे 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 आगे उन्नति होगा, आखिरी में जाकर आत्मसमर्पण होगा, इससे पहले नहीं हुआ किंतु वो भी कब होगा, जोगमा जी की कृपा से युगपीठ जहां पर जो युक्त करा देंगे, कहा सती सुनो नंदी स्वरम प्रतिशुत गुरुवरम मुकुंद पृष्ठ स्मर और मनुमन सची सुन जो नंदनंदन है उनके परिकारों के साथ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमारे चैतन्य चंद्रामित में हमारे सर्वदानंद सरस्वती प्रभु ये कीर्तन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गौरव की स्तुति कर रहे हैं, साथ साथ में धाम के लिए स्तुति किया, क्या धाम के लिए स्तुति किया, कल हम लोगों ने सुना कि परम पद नवद्वीप प्रकटम प्रदातु च अन्येभ्यो, कि ओ अन्य दूसरा कोई भी ऐसे शक्ति समन्वित नहीं है कलयुग में, कोई भी धाम कोई भी तीर्थ कुछ भी नहीं है जो कि दे सके, एक एकमात्र श्री नवद्वीप परम पदम परम पद को देने वाला है और क्या करेंगे प्रदातुम क्या प्रदान करेंगे प्रेमोन्मद मधुई पीयूष लहरिंग विशुद्ध सौ विशुद्ध जो बहुत सुंदर जिस प्रेम को लेके आए वो मधुरी मधुर पीयूष अमृत मधुर शासन में अमृत है परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में एकमात्र जो परम अमृत स्वरूप है वो प्रदान करेंगे, तब जीव कहीं है अनर्थ कौशा है दुनिया का सब जाकर के डूब जाएंगे भूल जाएंगे सब, वही एकमात्र स्वर्ण क्या भक्ति के बाद कीर्तन क्या भक्ति के द्वारा परीक्षित श्रवण भगवत वैयास की कीर्तन है और तदंगरी पूजन लक्ष्मी पृथु तदंगरी श्रवण लक्ष्मी पृथु पूजन है और दैत्य अर्जुन और ना दैत्य कपि और कपिपति दैत्य अर्थात सत्य अर्जुन और इसके बाद में क्या बोला बलिभूत कृष्ण त्रिशाम परम ऐसे बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे नवद्वीप धाम प्रकट है, इस नवद्वीप धाम की नवद्वीप की धाम की शरणागत होना है, उनके महिमा को जानना है। तब तो बता रहे धर्मा पृष्ठ सतत परमाविष्ट एवं धर्मे दृष्टि प्राप्त नहीं खलु सतांग सृष्टि सुखा पिनो सन जगत श्रीहरी हरिदस सुधा स्वादमत प्रणीत तुय प्रणतु उच्च गाय तथ विलुठत विलुठति स्तोमी तं जंची दिशाम। हम और बता रहे हैं जो व्यक्ति धर्म करते अपृष्ट अर्थात जिनके अंदर में धर्म सृष्ट अर्थात कोई भी लेश मात्र धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, सुकृति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर में पुण्यादि कोई धर्म नहीं और अत्य धर्म में अर्थात महापाप में परमाविष्ट निरंतर अत्यंत आविष्ट है, ऐसे व्यक्ति नहीं कुल सदांग दृष्टि प्राप्त साधुओं के कृपा दृष्टि भी उनके ऊपर मिला नहीं, ऐसा विदित अर्थात जिस देश में साधु भी पहुंचे ही नहीं और जिस व्यक्ति के ऊपर साधु की कृपा हुई ही नहीं, धर्मगर भी नहीं पड़ा, ऐसे भी कोई व्यक्ति है तेसांग सृष्टि से काफी अर्थात संशिष्ट को स्थान अवस्थान करना है और साधुओं के निकटवर्ती भी कोई स्थान में वो जन्म ग्रहण नहीं किया या अवस्थान करने की सौभाग्य नहीं हुआ ऐसी जगह में है? तो क्या तथित जन ऐसे व्यक्ति भी यदि जगत हरि रस सुधा अस्वद मत्त यदि उनके प्रदत्त श्री अर्थात शोभा स्वरूप श्रीमती राधारानी अर्थात हरि जो कृष्ण उनके प्रेम रूपी आस्वदन में मत्त होकर के जो नृत्य कर रहे हैं, उत्सव से गान कर रहे हैं और भूमि में विरंडित कर रहे हैं, उनके यदि कोई भी एक बार श्रवण कर लिया उनके नाम, उनके धाम में पहुंच गया या धाम को स्मरण कर लिया, ऐसे महापातों की पापिष्ठ जो साधु संघ में भी नहीं आया और उनको रुचि भी नहीं है, साधु से संबंध भी नहीं है और साधु भी कभी पहुंचे नहीं, उनका नजर भी पड़ा नहीं, सुकृति भी नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति यदि चैतन्य चंद के कैसे चैतन्य चंद जो समस्त सुबह के आकर्ष स्वरूप श्री चैतन्य चंद्र अर्थात श्री बताने से श्रीमती राधिका और हरि अर्थात श्री कृष्ण अर्थात जो कि प्रेम रसुदा सदन में मत होकर के वो नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं और जो में लुंठन कर रहे हैं, ऐसे चैतन्य चंद्र थे किसी भी स्मरण में कीर्तन में किसी भी उनके नाम यदि उनको श्रवण कर लेते, धाम की स्मरण कर लेते, निश्चित रूप उनको वो परम पद प्राप्त हो जाएगा। अब देखो प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, धर्म जगह कखनो स्पर्श करे नाई, पुण्य लेश मात्र जाते विद्यमान नाई, धर्म जिनको कभी स्पर्श नहीं किया और पुण्य के लेश मात्र जिनमें विद्यमान नहीं है, किंचित भी नहीं है, सर्वदा महापाप से निमग्न है और कभी भी साधुओं की कृपा कटाक्ष लाभ नहीं किया या सज्जनों ने जो प्रतिष्ठित किया है प्रतिष्ठा किए हैं पाप प्रवेश शून्य अर्थात मठ मंदिर या कोई आश्रम या सत्संग, वहां भी कभी उन्होंने पवित्र स्थल में कभी भी गए नहीं है, ऐसे पापी व्यक्ति यदि उनके चैतन्य चंद्र के प्रदत्त राधा कृष्ण से जो प्रेम पीयूष असदन मत होकर के उद्यामित और उच्च संकीर्तन के द्वारा जो जमीन में लोटपोट खा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के यदि कभी संस्पर्श हो गया या उनके नाम स्मरण कर लिया या ऐसे अनिर्वचनीय पुरुष के हवा भी लग गया, धाम का स्मरण कर लिया, कोई उचित प्रसाद कैसे भी उनको पूर्ण करके मिल गया तो क्या होगा, सदा के लिए परम पद प्राप्त कर लेगा, परम पद के लिए उत्कंठा युक्त हो जाएगा, ऐसे अनिर्वचनीय पुरुष को मैं सब करता हूँ। अभी किसके लिए बतलाया? कैसे? स्वामी जी को देखो, महाराज जी को देखो, जिस देशों में, जिस नगरों में जहाँ पर कोई व्यक्ति भगवान नाम का कुछ जानते नहीं, किंतु ये लोग जाते ही एक बार गए, दस बार स्वामी जी भ्रमण नहीं कर पाए, किंतु हवा साथ साथ में दिख गया, ना जाने कैसे कैसे श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उन लोगों को तो उद्धार हो जा रहा है। क्यों? उनके हृदय में देश ईर्ष्या या इस भगवत राज्य के प्रति अपराध युक्त तो नहीं है। वहां विचार दिया है कि जगाई मा भाई सब पाप किया, किंतु वैष्णव अपराध वैष्णव निंदा नहीं की। तो साधारण व्यक्तियों के लिए यह महा औषधि स्वरूप है, किंतु ज्ञान पापियों के लिए जानबूझ करके विरोध करना साधु संतों के प्रति या भागवत के प्रति, तो वहां पर किंतु ये कार्य नहीं होगा, वहां पर देर लगेगा। बता रहे हैं, जन नातम कर्म कर्म निश्चय न च समधिगतम जत्तोपधेन जोगई वैराग्यई त्याग तत्त स्तुति भिरपि न जत्र कीर्तनं चपि कश्चित् गोविंद प्रेम भाजमपि न च कलितं जदत् यद्रहस्यं स्वयं तं नामैव प्रसूत प्रादुष रसिद अवतरति परे जत्रं तं नौमि गौरम। बोलते हैं कर्मनिष्ठ जन अर्थात जिनको कर्म में बहुत आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति बहुत आसक्ति है कर्म में, वो नहीं लाभ कर सकते हैं क्या है? क्या तपोधन जो जो लोग करते हैं है? उनको लाभ हो जाएगा? या कोई वो तपोधन भी नहीं कर सकते हैं, समाधि नहीं लगा सकते हैं क्या उनको? और वैराग्य भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, तप भी नहीं है, और कोई तर्क भी नहीं करना जानते हैं, तो बात भी नहीं करना जानते हैं, क्या वो उपलब्धि नहीं कर सकते हैं? भाई पढ़ा लिखा नहीं और जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इंद्र संयम नहीं कर पाए, पढ़ा लिखा नहीं सबस्थिति नहीं कर पाया, दान नहीं कर सकते, कुछ त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है, और कर्मी महाकर्मी, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा कि यदि ऐसे व्यक्ति हैं वो क्या गोविंद के प्रेम भजन जननाम अर्थात गोविंद के जो प्रेम भजन पुरुष है उनके साथ मिलित नहीं हो सकते हैं। बोलते हैं श्री गौरांग अवतीर्ण हुए हैं, आप स्वयं प्रकाशित हुए हैं, और प्रकाशित होकर बोलते हैं चिंता नहीं है, मैं आ रहा हूँ, सर्वत्र मैं जाऊंगा, सर्वत्र मैं जाकर के प्रचार सबको उद्धार करूंगा। कैसे? बोलते तीन जगह मेरा जन्म होगा, कहाँ कहाँ? सच्ची के गर्भ में मैं जन्म ग्रहण किया, वो मेरा माँ है, और जो लोग शुद्ध रूप से मेरा नाम कीर्तन करेंगे उनकी जीवा मेरा जननी है, और कौन है जननी है? कहाँ पर मैं आविर्भूत हूंगा? शुद्ध भक्तों के हृदय में, जैसे नकुल ब्रह्मचारी के फिर में आविष्ट हुए, और कहाँ हुए? ओ प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, निशिकानंद ब्रह्मचारी, और बुरा में गोगला गया कि आज मैं महाप्रभु को जरूर लाऊंगा इस संक्रांति के दिन में, पोष संक्रांति के दिन में, दिन भर सुबह से बतला दिया सब व्यवस्था करो, लाए शिवानंद सिंह एकत्र किया, रस्सी बनाए, भोग लगाया, भोग लगा करके थाली परोस दी जगन्नाथ जी के लिए और महाप्रभु जी के लिए नृसिंह देव का भोग, और भोग लगा करके बाहर आकर बोले महाप्रभु चल दिए हैं और आने वाले हैं, थोड़ी देर में वो मंदिर खोल कर रोने लग गए। क्या हुआ भाई? महाप्रभु आए, किन्तु महाप्रभु जगन्नाथ और महाप्रभु एक है, दोनों का खाली है, कोई बात नहीं, किन्तु मेरा नृसिंहदेव का भोग क्यों खाया? और यदि हमारे नृसिंहदेव उपवासी हैं तो सेवक कैसे जिएगा? रोने लगे, छटपट करने लगे, फिर शिवानंद सिंह व्यवस्था किया, चूल्हा चौका लिपा पोता, फिर रस्सी बनाए, फिर भोग लगाया। जब नृसिंहानंद जाते हैं पूरी में सब भक्तों के साथ में तो महाप्रभु बताते हैं उनकी, देखो कैसा भक्ति है, कैसा भक्त है, उनके नृसिंहदेव ने तो सब खाया, मैं थोड़ी ना खाया, मैं थोड़ी नृसिंहदेव हूँ, मैं तो सामान्य जीव हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं यदि कोई भक्त प्रीतिपूर्वक मुझे बुलाते हैं और किसके हृदय निर्मल है या किसी के जीवा में शुद्ध रूप से कीर्तन करने की इच्छा भी रखते हैं, मैं वह जन्म का अभिभूत होता हूँ। तो महाप्रभु कलयुग में बताया, ऐसे यदि व्यक्ति है तो वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नाम संकीर्तन के द्वारा वहाँ भी पहुँच करके मैं सबको उद्धार करूंगा। अब उन बात में बता रहे हैं, कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो लाभ नहीं कर सकते हैं तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, जो कुछ ज्ञात तो नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, और वैराग्य के द्वारा, कर्मत्याग के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, सब पाठ के द्वारा जो वृद्धि करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो कैसे गोविंद की जो प्रेम समापरायण भक्तों के कृपा प्राप्त करेंगे, या रसचातुर्य विचारों को जानेंगे, पर के भाव को समझेंगे, जो सबके लिए अलग है किंतु वो गुण प्रेम को यदि आविर्भाव करना है, कैसे आविर्भूत करना है, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही वो आविर्भूत हो सकता है। और वो नाम संकीर्तन ये गौर सुंदर अपने आप ही जगत में आविर्भूत करा करके समस्त जीवों के लिए कल्याण किया, ऐसे गौर सुंदर के लिए मैं तप करता हूँ। एकमात्र नाम संकीर्तन के अंदर में नाम कीर्तन करने वाला त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, कुछ भी नहीं, पवित्रता नहीं, योग नहीं, नियम नहीं, श्रद्धा नहीं, दान नहीं कर सकते, तपस्या नहीं, कुछ भी नहीं, कि नाम संकीर्तन, नाम का आश्रय ले ली, संपूर्ण रूप में शरणागत हो गए नाम के चरणों में, तो निश्चित रूप में उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, वो गौर सुंदर सब कुछ दे देंगे। गौर सुंदर बोलते मैं वहां पहुंच करके प्रवेश कर सब दूंगा, सब गुण उनके अंदर में आएगा, नहीं आए गुण नाम के शरणागत अनन्य, तो मैं उनके लिए सब दे दूंगा। दिष्ट पिष्ट कृतित संस्मित दूर स्थन स्थिरपन तो अद्भादृत वा प्रेम न सारंग दातुमीशो जय कह चैतन्य नौमि देव दयालु। बता रहे जिनके दर्शन स्पर्शन और स्मरण और आदर और दूरस्थ व्यक्तियों के लिए स्मरण की योग्य नहीं है अभी, अर्थात अधिक व्यक्ति जो कि उनके लिए, किंतु महाप्रभु क्या करते हैं, एक बार भी यदि फिर से सुनकर के भी चेतन चंद्र की स्मरण किया तो निश्चित रूप में समस्त प्रेम को मैं प्रदान करूंगा। पता है जिनके दर्शन स्पर्शन और कीर्तन और दूषित व्यक्तियों के लिए स्मरण और नमस्कार और आदर करना, ये सब चीज अभी योग्यता नहीं है जीव के अंदर में, मानो सुन लिया चेतन महाप्रभु के नाम कि वह जा नहीं सकते, और उनके भक्तों के नाम सुना वह स्मरण नहीं कर सकते, उनकी याद नहीं हो रहा है, या उनके निकट जाकर के धाम को भी स्पर्श नहीं कर सकते, महाप्रसाद पा नहीं सकते, ऐसा योग्य संस्कार नहीं है, या वहां जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करेगा, और विषय में आकृष्ट है। ऐसा होने पर भी किंतु यदि एक बार नाम का आश्रय ले लिया, हरिनाम कीर्तन करने लगे और गोसुंदर की चरणाश्रय कर ली, मनी मन भी कर ली, तो गोसुंदर क्या करे, चैतन्य चंद्र दयालु प्रभु उनको इस महा अतुल अश्रजमयी और औदार्यमयी जो भाव है उनके हृदय में संचारित करेंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं स्तुति करता हूँ। फिर बता रहे कैवल्यम नरक आयते तीर्थ प्रकाश पुष्प आयते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्वपटलिंग प्रोक्षात दंशायते विश्वम पूर्णम सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कृटायते जत्कारुण्य कटाक्ष होतां। जत कारुण्य कटाक्ष वैभवतां, जिनके करुणा और शिवा कटाक्ष वैभव और संपत्ति जिन लोगों के, उनके लिए बता रहे हैं, वो लोग कबीर लड़ ईश्वर साधिज्य जो सुख है तो मुक्ति है उसको कैसे समझते हैं, नरक के समान, और तीजस अर्थात तीरावृत जो 33 संख्या विशिष्ट अर्थात जिसमें द्वादश आदित्य, एकादश शूद्र, अष्ट वसु, अश्विनी कुमार ये 33 देवता प्रधान है, ऐसे तीजस पूर्व अर्थात स्वर्ग वो उसको कैसे समझते आकाश पुष्प अर्थात आकाश कुसुम के समान अलिक बेकार चीज है, स्वर्ग भी उनके लिए तुच्छ बोल जाता है। और दुर्दांत इंद्रिय काल स्वरूप बटलिंग, दुर्दांत शब्द बतलाया अनिवार्य काल अति क्रोधयुक्त सर्प इंद्रिय सर्प स्वरूप इंद्रिय समूह, इंद्रिय समूह कैसा है सांप के समान है, पता नहीं कभी क्रोधित हो जाए कभी डसे, किसको डसता है, इंद्रिया प्रबल हो गया और प्रबल होकर के क्रोध कर लिया, नुकसान किसका हुआ, इतना काम सताया किसको काटा, दूसरे को, अपने को ही काटा, अपना बर्बाद किया। और दुर्दांत इंद्रिय, इंद्रिय को तो प्रबल इंद्रिय है उसको दमन करना कठिन, मन चंचल हो गया उस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा मन करने में कुछ ठेस पहुंच गया निकाल नहीं सकते हैं। और मन कोई चीज को ग्रहण करके रख दिया और कोई भी समझाते हैं किसी की बात नहीं मानते हैं, इंद्रिया इतना प्रबल है, जीवा ऐसा दुष्ट है, और हाथ पैर सभी एक एक इंद्रियों को मतलब काल सर्प के समान है, दूर जानते अनिवार्य इसको दमन करना उसका।